दिन भर 21 नवंबर दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदल। नोटबंदी के फैसले पर छिड़ा राजनीतिक तूफान अभी भी जारी। प्रधानमंत्री को सदन में बुलाने पर अड़ा विपक्ष।
सरकार ने गड़बड़ किया है और इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है बिना तैयारी के, इसलिए प्रधानमंत्री जी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो सदन के अंदर आकर बैठे और इसके ऊपर डिबेट चले।
आज से शुरू हो रही है महिलाओं पर आधारित बीबीसी की विशेष श्रृंखला 100 वुमेन। बात करेंगे मोहनलालगंज की पूर्व सांसद रीना चौधरी से।
पढ़ी लिखी महिला थी तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी बात समझाने में, कहने में पब्लिक को ज्यादा आसानी हुई और उन लोगों ने उस बात को समझा।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, आप सुन रहे हैं सुशील झा से। नोटबंदी के मुद्दे पर भारतीय संसद में आज दिन भर हंगामा हुआ और दोनों सदनों की बैठक स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार कुछ चुनिंदा लोगों के लिए काम कर रही है और आम लोगों की उसे फिक्र नहीं है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री के संसद में मौजूद नहीं होने को भी मुद्दा बनाया और संसद को चलने नहीं दिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि विपक्ष उस मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहता और सिर्फ संसद की कार्यवाही स्थगित करना चाहता है। उधर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी नोटबंदी के मामले में सरकार की आलोचना की और कहा है कि वो इस मुद्दे पर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि नोटबंदी की घोषणा के बाद से अब तक बैंकों में रुपयों की शक्ल में 75 अरब डॉलर जमा हो चुके हैं। करीब 2 हफ्ते पहले 500 और 1000 के नोटों पर लगी रोक के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने ये नोट बदले हैं या फिर जमा किए हैं। हालांकि इस फैसले में बड़े पैमाने पर लोगों को दिक्कतें भी हुई हैं। सोमवार को सरकार ने किसानों को पुराने नोटों से ही बीज खरीदने की अनुमति दी है और व्यवसायियों को अधिक राशि निकालने की भी परमिशन दी। अफगानिस्तान में पुलिस का कहना है कि काबुल में एक मस्जिद के भीतर हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार एक आत्मघाती हमलावर ने नमाज के दौरान विस्फोट किया। तालिबान ने इस हमले में शामिल होने से इनकार किया है, जबकि इस्लामिक स्टेट ने इसकी जिम्मेदारी ली है। मस्जिद में मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी का कहना था, मैंने अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों की खुद मदद की, मैंने करीब 30-35 लाशें देखी हैं, वो मस्जिद के अंदर थी, कम से कम 100 लोग तो जरूर घायल हुए होंगे इस धमाके में। प्रत्यक्षदर्शी सैयद अली के शब्द। उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास हुई ट्रेन दुर्घटना में अभी भी राहत कार्य जारी है। इस दुर्घटना में अब तक 140 से अधिक मौतों की जानकारी है, जबकि 150 से अधिक लोग घायल बताए जाते हैं। इंदौर से पटना जा रही इस ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए थे। राहतकर्मी एक दूसरे में गूंथ गए डिब्बों को काटकर अभी भी अलग कर रहे हैं। फ्रांस के गृहमंत्री बर्नार्ड कैजिन्वी ने बताया है कि सप्ताहांत के दौरान देश में कई जगहों पर आतंकवाद निरोधक अभियान चलाया गया है और एक बड़े चरमपंथी हमले को रोकने में सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि मार्शेली और स्ट्रासबर्ग में मारे गए छापों में फ्रांस, मोरक्को और अफगानिस्तानी राष्ट्रीयता के 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 6 लोग पहले ही गुप्तचर सेवाओं के रडार पर थे। गृहमंत्री ने यह नहीं बताया कि कौन सा हमला रोका गया, लेकिन स्ट्रासबर्ग में शुक्रवार से दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा क्रिसमस मेला शुरू होने वाला है। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि म्यांमार के रखाइन प्रांत से मिल रहे नए सैटेलाइट चित्रों से पता चलता है कि अल्पसंख्यक रोहिंग्या लोगों के कम 1200 घर तबाह कर दिए गए हैं। पिछले महीने बर्मा की सेना ने एक चेकपोस्ट गार्ड पर हमले के बाद से ही इस इलाके में सेना चरमपंथी विरोधी अभियान चला रही है। अभियान के कारण हजारों की संख्या में रोहिंग्या मुसलमान यह इलाका छोड़कर भाग रहे हैं। भारत के सेनाध्यक्ष दलबीर सिंह और सेना के अन्य बड़े पदाधिकारी चीन की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। रिपोर्टों के अनुसार यह प्रतिनिधिमंडल चीन के साथ कुछ संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करेगा, जिसमें विवादित सीमा पर तैनाती का भी मुद्दा होगा। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। केंद्र सरकार के नोटबंदी फैसले पर छिड़ा राजनीतिक तूफान अभी थमा नहीं है। जहां चंद विपक्षी दल अभी भी इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, वहीं तमाम दूसरे इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। आज संसद के दोनों सदनों में भी नोटबंदी का मामला छाया रहा और विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक फैसले से कुछ ग्राहकों को राहत जरूर मिली होगी, जिसके अनुसार 1 करोड़ तक के होम लोन, कार लोन या कृषि लोन देने वालों को इन्हें अदा करने के लिए 60 दिन की मोहलत और दे दी गई है। ये मोहलत उन ऋणों पर लागू होगी जिन्हें 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच चुकाया जाना था। उधर संसद के दोनों सदनों में आज शोर शराबे की शुरुआत की वजह रही कानपुर के पास हुआ ट्रेन हादसा। लेकिन इस मामले के अलावा पिछले हफ्ते की ही तरह नोटबंदी और आम लोगों को उससे होने वाली कथित मुश्किलों पर विपक्षी दल सरकार को आड़े हाथों लेते रहे। विपक्षी दलों ने संसदीय काम शुरू होने के पहले ही एक बैठक कर ये तय कर लिया था कि नोटबंदी के कारण कुछ कथित मौतों पर कार्य स्थगन प्रस्ताव पर जोर देना जारी रहेगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तो राज्यसभा में नहीं गए, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष को जवाब देने की भरपूर कोशिश की।
बहस चल रही है, कुछ माननीय सदस्यों ने बोलना है, बहस का उत्तर देना है, विपक्ष उस बहस से भाग क्यों रहा है? इस नीति का जो मेरिट डीमेरिट है उस डिबेट के अंदर आ जाएगा। ये स्पष्ट है कि विपक्ष बहस के लिए तैयार नहीं है और सदन को डिस्टर्ब करने के रोज नए नए तरह के तरीके ढूंढ रहा है।
जबरदस्त शोर शराबे के बीच संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि पूरा देश सरकार के इस फैसले से खुश है, लेकिन विपक्षी दलों पर ये तमाम दलीलें नहीं चली और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर बहुजन समाज पार्टी नेता मायावती ने संसद से बाहर निकलकर अपने तर्क रखे। मायावती ने कहा,
पूंजीपति धन्ना सेठ लोग हैं, वो तो मुश्किल से 5-10% मिलेंगे, 90% तो गरीब मेहनत कश लोग और मध्यम वर्गीय लोग मिलेंगे। मेरे ख्याल सरकार को ये सोचना चाहिए था, सरकार ने गड़बड़ किया है, इसलिए प्रधानमंत्री जी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो सदन के अंदर आकर बैठे और इसके ऊपर डिबेट चले।
उधर तृणमूल कांग्रेस ने सोमवार को भी संसद के प्रवेश द्वार पर नोटबंदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को तड़के सुबह दिल्ली के कई इलाकों में बैंकों और एटीएम मशीनों के सामने लगी लाइनों में आम लोगों से मिलने गए। राहुल गांधी ने कुछ बैंकों पर अमीरों की ज्यादा मदद करने के भी आरोप लगाए हैं।
लोगों ने कहा कि उनको बहुत कष्ट हो रहा है, लोग कह रहे थे कि वो लाइन में खड़े हैं और पीछे से बैंक के पीछे से डील हो रही है, कैश निकाला जा रहा है और चुने हुए लोगों को वो कैश दिया जा रहा है। जो अमीर है वो पीछे से पैसा ले जा रहा है और जो गरीब है वो लाइन में खड़ा हो।
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस बात के भी आरोप लगाए हैं कि वे नोटबंदी यानी इतने बड़े आर्थिक फैसले चंद लोगों की राय से ही लेते हैं और अंजाम की चिंता नहीं करते। इस पूरी कहासुनी के मंजर में एक चीज जो अभी तक समझ में आ रही है वो ये कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में फिर से संसद का काम ठप सा पड़ गया है। नितिन श्रीवास्तव, BBC दिल्ली।
कानपुर के नजदीक हुए रेल हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 147 हो गई है, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। गंभीर रूप से घायलों का इलाज कानपुर के हैलट अस्पताल में चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि राहत का काम रोक दिया गया है, क्योंकि अब इस बात की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही कि कोई भी व्यक्ति जीवित बचा होगा। इसको पिछले 6 साल में सबसे बड़ा रेल हादसा बताया जा रहा है। कानपुर से सुबैर अहमद ने ये रिपोर्ट भेजी है।
आज सुबह जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा तो राहत का काम जोर शोर से चल रहा था। कई सौ राहतकारी मलबे के नीचे दबे शव को निकालने की कोशिश में जुटे थे। मेरे सामने 5 शव निकाले गए। राहत करने वाली एक टीम के एक लीडर ने हमें ये बताया।
मैं डिप्टी कमांडेंट हूँ 11 NDRF में। यहाँ पर जब हमारी टीम पहले आई तो देखा कि 3 बोगियाँ बुरी तरह से स्मैच हो चुकी हैं और 14 बोगियाँ डिरेल्ड हो चुकी हैं। तो जो सबसे प्रायोरिटी वाली बोगियाँ थी, जहाँ पर ज़्यादा लाइफ विक्टिम दिख रहे थे, हमने वहाँ से रेस्क्यू काम अपना स्टार्ट किया।
घटनास्थल पर ट्रेन के कुछ डब्बे आपस में टकराकर पूरी तरह से तबाह हो चुके थे, एक दूसरे में घुसे हुए थे। लोहे मलबे का ढेर बन चुके थे, यात्रियों के सामान इधर उधर बिखरे पड़े थे। बच जाने वाले एक यात्री के कई परिवार वाले हादसे में मारे गए थे।
जी, मेरा नाम अनिल कुमार है सर।
और ये जो तस्वीर आपने ली हुई, आपके भाई हैं?
जी, ये मेरे बड़े भाई हैं। इनका नाम है तर्केश्वर महतो उर्फ मुन्ना, मुन्ना महतो। ये इंदौर से पटना के लिए आ रहे थे और जब हम लोग को मालूम चला कि इस तरह की घटना घटी, तो हम लोग अपना बाई रोड से पटना यहाँ आए हैं। तो ये सामने जो मलबा के काम जो दिख रहा है हमको, उसमें हमने अभी देखा है हाथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए मुझे उनको
काम और जगह देखा।
जी हाँ, हमने सब जगह देख लिया, हॉस्पिटल में देख लिया, जहाँ जहाँ देखना था हमने सब जगह इंक्वायरी कर ली, सब जगह देख ली, कहीं पर कुछ नहीं है।
पटना से आया हुआ एक व्यक्ति अपने पिता का अभी इंतजार कर रहा था। अधिकारी कहते हैं कि राहत का काम अब रोक दिया गया है, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं कि अब कोई जिंदा बचा होगा। रेलवे के प्रवक्ता विजय कुमार कहते हैं,
ये रूट जो है वो आज देर रात तक बहाल होने की संभावना है। अभी तक 10 कोचेज हटाए जा चुके हैं, 4 कोच हटाए जाने बाकी हैं और देर रात तक संभावना है कि ये ट्रैक बहाल हो जाएगा।
अब पटरियों से मलबे को साफ करने का काम जोर शोर से चल रहा है। कल से अधिकारी कहते हैं कि ट्रेनें दोबारा शुरू हो सकती हैं। जुबैर अहमद, BBC कानपुर।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम।
बीबीसी हिंदी।
बीबीसी आज से शुरू कर रहा है औरतों और उनके सरोकारों से जुड़ी विशेष रिपोर्टों की सीरीज 100 वुमेन। इसमें हमारे संवाददाता आप तक लेकर आएंगे ऐसी बेखौफ दमदार औरतों की कहानियां जो मुख्यधारा से छिपी रह जाती हैं। कोशिश होगी भारत में औरतों के बदलते दर्जे और उनके हकों की लड़ाई को आप तक लाने की। आज हमारी पहली पेशकश उत्तर प्रदेश के ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र मोहनलालगंज से। यहां महिलाएं खेतीबाड़ी, दिहाड़ी मजदूरी और प्राथमिक स्कूली शिक्षा से आगे नहीं बढ़ी हैं, लेकिन इस सीट की खास बात यह है कि इलाके से बाहर की औरतें यहां सांसद का चुनाव लड़ी और जीती भी। पूरे देश में किसी एक लोकसभा सीट पर बार बार औरतों का जीतना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं, पर ऐसा क्यों है? मोहनलालगंज की पहली बूझने वहां की एक चाय की दुकान पर कुछ मर्दों से बात करने पहुंची बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य।
यहाँ पर जो औरतें सांसद रहीं उनको क्यों चुना गया? बड़ा कम सुना जाता है कि एक ही संसदीय क्षेत्र से बार बार औरतें चुनी जाएं, और मोहनलालगंज से 16 लोकसभा में से 8 लोकसभा में औरत सांसद चुनी गई हैं, सब अलग अलग पार्टी की भी थी। क्या लगता है आपको क्यों चुनी गई?
अरे इसलिए जो कैंडिडेट खड़ा होगा वही चुना जाएगा।
तो वोट किसके लिए पड़ता है, कैंडिडेट के लिए पड़ता है कि पार्टी के लिए?
पार्टी के लिए, पार्टी बेस पर। जिस पार्टी की लहर रहती है उसी के कैंडिडेट यहाँ से निकलता है।
तो पार्टी बेसिस जब यहाँ वोट पड़ता है तो पार्टी की लहर होगी, वही जीता है, उसी कैंडिडेट जीतता है।
पार्टी और कैंडिडेट दोनों के लिए वोट पड़ता है। जैसी हवा बन जाए, जनता जैसी सोच ले कि हमको इनको जिताना है।
तो ये बताइए, जब ये चुने गए पूर्णिमा वर्मा या रीना चौधरी या सुशीला सरोज, तो तब इनके कैंडिडेट के मतलब इनके लिए वोट पड़ा होगा या इनकी पार्टी के लिए?
नहीं नहीं, इनके लिए पड़ा वोट, पार्टी के लिए बात नहीं रही।
तो पर जैसे रीना चौधरी का तो कोई काम ही नहीं था उससे पहले, वो सीधा सांसद के लिए लड़ी, फिर भी उनके लिए वोट पड़ा?
हाँ, पूरा पूरा ध्यान है। हम उस समय मोहनलालगंज में पढ़ रहे थे। अच्छा। उस समय जो है उस समय बिल्कुल रीना चौधरी के लिए ही वोट पड़ा था।
क्यों? क्योंकि वो युवा नेता थी
जी, इसी आधार पर पड़ा था। और पहली बार उनकी मीटिंग सर्वप्रथम कारोबीर में पहली बार लगी थी जब वो भाषण नहीं दे पाई।
अच्छा।
हाँ, मैं मौजूद था जब लड़ी थी तब आप भाषण नहीं दे पाई रहे।
अच्छा।
हाँ,
फिर भी लोगों ने मौका दिया उनको और हाँ, दो बार दिया।
सुशीला सरोज भी शायद दादा दो बार रही।
अच्छा, जो राजनीति में औरतें ज्यादा काम करती हैं कि आदमी ज्यादा काम करते हैं जब एक बार सत्ता उनके हाथ में आ जाती, क्या लगता है आपको?
आदमी ज्यादा काम करते,
आदमी ज्यादा काम करते हैं, आदमी से हम लोग मिल भी लेते हैं। अब जैसे यहाँ की औरत प्रधान है, हम लोग कभी नहीं मिल पाते, भाई हमसे क्या उनके आदमी कहते हैं, तो वो भी अब बड़े आदमी ज्यादा बार बार एक तो पहली बार जो उनके दरवाजे हुआ तो 3 घंटा खड़े रहो दुकान छोड़ के, उसके बाद निकले तो बोले कि शाम को मिलना, काम खत्म हो गया।
यदि जनतक देखा जाए तो पुरुष पे ज़्यादा लोग वो समझते हैं, लेकिन हमारी जहाँ तक सोच है वहाँ तक जो है यदि कर्तव्य कर रही हैं, जा रही हैं क्षेत्र में, लोगों से मिल रही हैं, उनके दुख दर्द को समझ रही हैं, तो दोनों के लिए वही समानता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो।
लेडीज भी बहुत भाग रहता है, काम करती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन लेडीज के मिलने में प्रॉब्लम है, यदि कहीं गई हैं तो हम लोग जोर दे के नहीं मिल सकते। लेडीज भी आए, खूब आए, ये नहीं कहते हैं, हम कहते हैं अगर 100 सीटें हैं तो उनमें 50 लेडीज आए, मगर हम लोग उनसे कहते हैं इसलिए कि जो ज्यादा काम हो सके।
तो यहाँ से इतनी बार औरतें क्यों चुनी गई सांसद, ये नहीं मुझे समझ।
ये कि यहाँ पे लेडीज ज्यादा से ज्यादा जा सकती हैं, आदमी सब अपने काम में लगे हुए हैं, बात ये है लेडीजें लगा दिया लाइन तो लगा दिया, बस ये होता है, और लेडीजें संपर्क ज्यादा करती, जेंट्स से संपर्क होता नहीं है।
क्या औरतें मतलब आप कह रहे हैं ज्यादा वोट डालती हैं?
वोट ज्यादा वही डालती है, ज्यादा इसलिए डालती है कि अगर उनको कहीं जाना भी आदमी को कहा आप बच्चन गले जाकर डरा ले।
अरे नहीं, ऐसा तो नहीं,
नहीं ऐसा है, ऐसा
मतदाता तो जितने आदमी उतनी औरतें हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं, कोई खास फर्क नहीं है। नहीं
भाई, अगर हम ये कहते हैं कि लेडीज जीत रही है तो लेडीज का मतलब काम कर रही है, तभी लेडीज जीत रही है,
तो मतलब लेडीज काम कर रही है
जी,
ये
जी,
भी एक कंक्लूजन किया जा सकता है।
सबसे ज्यादा समस्या हमारे यहाँ हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है, हर मरीज के लिए व्यवस्था नहीं है कि सही ढंग से उपचार हो सके।
आपको ध्यान है ये सांसदों के कार्यकाल कैसे थे?
कार्यकाल सभी के बिल्कुल खराब थे।
अच्छा
सही था ना? सही था।
अच्छा
मगर शासन करने के बाद मोला दिखाई नहीं पड़े।
हाँ जीतने के बाद मीरा सरोज है, जीतने के बाद कभी दिखाई नहीं।
मगर तो आज लोग दिखाई नहीं,
देखा नहीं, दोबारा आए नहीं हो।
एक बात हम
मतलब क्या ऐसा है कि मर्द हो या औरत कोई भी सांसद दिखाई नहीं देता चुने जाने के बाद?
कोई नहीं दिखाई देता।
मोहनलालगंज में एक चाय की दुकान पर कुछ लोगों से बात कर रही थी दिव्या आर्य। उत्तर प्रदेश की इस लोकसभा सीट पर 2014 के आखिरी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कौशल किशोर सांसद चुने गए थे। हाल के दशकों में उनसे पहले सीट पर जीती महिला सांसदों में भारतीय जनता पार्टी की ही पूर्णिमा वर्मा और समाजवादी पार्टी की सुशीला सरोज और रीना चौधरी शामिल हैं। बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य ने रीना चौधरी से मुलाकात की।
रीना जी, आप मोहनलालगंज जो एक ऐसा चुनाव क्षेत्र है जहां 16 लोकसभा में से 8 लोकसभा में औरतें चुन के आईं, उसमें 2 बार चुन के आने वाली महिला सांसद रही हैं। आप 98 में चुनकर आईं और उसके बाद जो 13 महीने की सरकार थी जब वो गिरी उसके बाद आप दोबारा चुनकर आईं और तब आप महज 27 साल की। तो ये कितना मुश्किल था इतनी कम उम्र में अपनी पार्टी में ना आपका लोहा मनवा लेना कि आप ही को टिकट भी दी जाए और फिर आप काम भी करती रही।
ये फैक्ट है कि जब मैं इस क्षेत्र में आई थी मुझे कोई नहीं जानता था। मैं भी हैरान हुई थी कि लोगों ने मेरी इतनी कम, मेरी 28 साल की उम्र रही होगी, लेकिन क्योंकि मैं पढ़ी लिखी महिला थी तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी बात समझाने में, कहने में पब्लिक को ज़्यादा आसानी हुई और उन लोगों ने उस बात को समझा।
MA LLB की आपने पढ़ाई की है, जाहिर है उससे एक रुतबा आपका बढ़ा, लेकिन आपको जितना पब्लिक को समझाना था उतना ही आपको अपनी पार्टी के जो वरिष्ठ खासतौर पे पुरुष नेता रहे होंगे उनको भी समझाना था और बाद में उनके साथ काम भी करना था, वो कितना मुश्किल था?
देखिए, अपने नेता को समझाना तो इतना मुश्किल नहीं हुआ क्योंकि उनको मेरी बातों से और उसको लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मुझसे ज़्यादा उनको विश्वास था कि अगर मुझे टिकट दिया तो शायद मैं अपनी बात पब्लिक के बीच ज़्यादा अच्छे से रख सकती हूँ।
यहाँ पर आपका मतलब है मुलायम सिंह यादव जी से, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से?
उस समय मैं समाजवादी पार्टी में थी, लेकिन हाँ जो मेरे आसपास जो लोग साथ में काम करते थे चुनाव जीतने के बाद उनको समझाना थोड़ा मुश्किल था अपनी कार्यशैली को, उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी।
लोगों का समर्थन आपको मिला क्योंकि आप दूसरी बार भी चुनकर आईं, लेकिन उसके बाद पार्टी ने ही आपसे 2 बार सांसद बने जाने के बावजूद, चुने जाने के बावजूद पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया। कुछ आप बताना चाहेंगी कि औरतों को किसी भी पार्टी में आगे बढ़ने में किस तरह की अड़चनें आती हैं?
कुछ लोग जैसे होते हैं कि जो हमसे सीनियर हैं और वो हमें नहीं पचा पाते हैं हमारी कार्यशैली को, उनको एक उनका अपना स्टाइल है काम करने का और हम उस स्टाइल और परंपरा को अगर हम तोड़ रहे हैं तो उनको तकलीफ ज़्यादा होती है। तो वो एक राजनीति में होता है कि लोग अगर आप अपना एक मुकाम बनाना चाहते हो तो कई लोग आप साजिश करना शुरू कर देते हैं आपके खिलाफ, तो उस समय मैं उस साजिश का शिकार हुई।
कि एक तरह से ये कह सकते हैं कि मर्द भी उस तरह की साजिशों का शिकार होते हैं, आपको लगता है औरतों के लिए चुनौतियां ज़्यादा हैं?
अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ, अगर मैं बिना किसी हिचक के, महिलाओं को ज़्यादा, क्योंकि महिलाओं को इसलिए ज़्यादा कि अगर आपका नाम हो रहा है, आपको लोग पसंद कर रहे हैं, तो ये पुरुष थोड़ा कम बचा पाते हैं इस बात को।
और क्या हमारे देश को और ज़्यादा औरतों की ज़रूरत है जो सांसद के स्तर तक चुनी जाएँ? कोई खास फ़र्क होता है जब एक औरत सांसद चुन के आती है या एक मर्द आता है?
बहुत फ़र्क पड़ता है। महिला का सांसद विधायक बनना महिलाओं की आपको परेशानी से आप बहुत आसानी से अवगत हो सकते हैं, मेरा मानना है।
पूर्व सांसद रीना चौधरी से बात कर रही थी दिव्या आर्य।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 7,600, 9,510, 11,995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। आज सोमवार है, आज के दिन आप इंतजार करते हैं अपने पत्रों का। आपके पत्र लेकर आ रहे हैं राजेश जोशी और वंदना।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का और
मेरा वंदना का
भी नमस्कार।
तो स्वागत है आपका, आपका यानी वंदना जी का और श्रोताओं का भी। पहली चिट्ठी कहाँ से आई है? मुझे लगता है कि आप ईमेल पढ़ने वाली हैं।
जी बिल्कुल, और ये बल्कि एक नहीं, ऐसी कई सारी ईमेल्स और चिट्ठियाँ हैं जो बीबीसी ने इंटरव्यू किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का,
जिसकी बहुत चर्चा हुई है। नितिन श्रीवास्तव ने यो इंटरव्यू किया था। जी हाँ, क्या लिखा है इन्होंने?
ये ईमेल है जंग बहादुर सिंह का, जो हमारे पुराने
जंग बहादुर साहब ने तो बहुत दिनों बाद ये ईमेल लिखी है। वो तो रोजाना लिखते थे लेकिन इस बीच बंद कर दिया। क्या लिखते हैं?
बिल्कुल, ये इन्होंने बहुत आलोचनात्मक टिप्पणी की है। कहा है कि बीबीसी की पत्रकारिता ने मुझे शर्म से अपना सिर झुकाने के लिए मजबूर कर दिया। नितिन श्रीवास्तव को तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो कैसे चूक गए? ये कब से होने लगा कि बीबीसी अपने मेहमान से उसकी बताई बातों का सबूत मांगने लगे?
अच्छा, इसका तो सीधा सा जवाब जंग बहादुर जी है कि अगर बीबीसी के किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी आदमी लाइव प्रोग्राम में किसी दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि या तो हम दूसरे पक्ष को रखें, और अगर हमारे पास सूचना नहीं है तो जो आदमी इल्ज़ाम लगा रहा है उससे कहा जाए कि आप ये इल्ज़ाम बीबीसी के प्लेटफॉर्म पर नहीं लगा सकते हैं। तो अगर आपने वो देखा हो, इंटरव्यू सुना हो, तो आपको मालूम होगा कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ फाइलें सामने रखी थी और उनके आधार पर वो आरोप लगा रहे थे। तो नितिन श्रीवास्तव ने एक पत्रकार का धर्म निभाया और उन्होंने कहा कि इस तरह से ये आपके इल्ज़ाम है, ये बीबीसी का इल्ज़ाम नहीं है। लेकिन आपको इंटरव्यू पसंद नहीं आया, आपकी राय हम ज़रूर उसकी कदर करते हैं, लेकिन बीबीसी अपनी पत्रकारिता को लेकर के बहुत ही सजग रहता है और ये सजगता हमारी जारी रहेगी।
इसी क्रम में मैं अगर एक और ईमेल पढ़ दूं प्रशांत कुमार का, इनका कहना है कि बीबीसी अब ये मुद्दा हो गया, पर अब बीबीसी इस पर राजनीति क्यों कर रही है?
बीबीसी राजनीति क्यों कर
रही है? आप आगे बढ़िए। इन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं बीबीसी वालों ने पूरा इंटरव्यू दिखाया या केवल अपना पक्ष दिखा दिया, अब जब ये सब हो गया है तो बीबीसी इस मुद्दे पर राजनीति क्यों कर रही है?
प्रशांत भाई, आपने ये दरअसल फेसबुक लाइव इंटरव्यू था जिसमें न तो कोई एडिटिंग हो सकती है, न कोई ऐसा हो सकता है कि हम कोई पक्ष छुपा दें, किसी पक्ष को उगाड़ दें। आप अगर फेसबुक से वाबस्ता हों तो आपको जानकारी होगी कि कैमरा ऑन होता है और वो जब तक ऑफ नहीं होता है तब तक पूरी बात सबके सामने जाती है। तो ये तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? नहीं, बीबीसी हिंदी के फेसबुक पेज पे आइए, उसको लाइक कीजिए और उसको देखिए, आपके सामने सब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। रही बात बीबीसी की राजनीति करने की, तो आई तो आप जानते ही हैं कि हम राजनीति नहीं, पत्रकारिता करते हैं।
जी तो अगला जो ईमेल है वो है एहसान असगर साहब का,
मलकापुर। हाँ, अच्छा अच्छा,
ये डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाणा से है।
जी,
पहले इन्होंने कहा कि पहले तो हमारी समस्याओं पर ध्यान दीजिए। बीबीसी हिंदी के ऐप से जब हम चारों सभाओं के कार्यक्रम सुनते हैं अपनी सुविधा अनुसार, तो मोबाइल स्क्रीन लॉक नहीं होता। अगर हम लॉक करें तो ऑडियो ऑफ हो जाता है, जबकि बीबीसी उर्दू में ऐसा नहीं होता।
मैं समझ गया, ये ऐप अभी बीबीसी हिंदी का नया है, और उन तमाम श्रोताओं को मैं बताना चाहूँगा जिनके पास स्मार्टफोन हैं और जो रेडियो पे जिनको सुनने में तकलीफ़ होती है, वो हमारा ऐप डाउनलोड करके हमारे चारों प्रोग्राम उनसे उनमें लाइव सुन सकते हैं। ये जो समस्या आप एहसान भाई जो आपको सामने मुश्किल पेश आ रही है, ये हम लंदन तक पहुंचा देंगे अपनी जो टेक्निकल टीम है और इसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे।
ये जो है पोस्ट कार्ड आया है नागेंद्र कुमार कुशवाहा साहब का, बिहार से इन्होंने लिखा है, पिपराही बाजार जिला शिवहर। जो पीलू मोदी पर विवेचना हुई रेहान साहब की, वो इनको काफी पसंद।
जी, बहुत मेहनत करके उन्होंने पीलू मोदी साहब पे विवेचना की थी और बहुत सारे लोगों को पसंद आई।
जी, इसी तरह से पुराना जो बेगम अख्तर का है विवेचना, वो उसकी भी तारीफ की चिट्ठी है, हालांकि थोड़ा सा।
ये किन्होंने लिखा है?
इनका नाम है रामजी लाल घोड़ेला।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी कोई आपके पास पोस्ट कार्ड है क्या?
एक ईमेल, थोड़ा सा पक्षपात का आरोप नहीं लगना चाहिए।
जी, ईमेल ले सकते हैं आप।
आलोचना है जाते जाते, जितेंद्र नारायण समस्तीपुर बिहार। इनका कहना है कि 21 नवंबर का जो नमस्कार भारत था, वो एक तरह से ऐसे लगा कि मोदी सरकार की ओर से प्रायोजित प्रसारण हो।
ये इनका कहना है कि मोदी सरकार की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम लगा,
क्योंकि इनका कहना है कि रेल दुर्घटना पर जो राज्य मंत्री मनोज सिन्हा की बात थी, फिर नोटबंदी पर जो भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी की बात थी, फिर आगरा रैली में जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया उसकी बात थी, विपक्ष का कोई पक्ष नहीं था।
भाई, ये सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात हमने रखी, क्योंकि रेल मंत्री, अगर बड़ी दुर्घटना हो रही है तो रेल मंत्री की बात आनी ही चाहिए। हम पे कई बार तो इल्ज़ाम ये लगता है भाई कि हम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं
जी।
जब अरविंद केजरीवाल का उसी तरह का हम इंटरव्यू करते हैं जो बीबीसी के नियम कायदों के अनुसार, तब हम पे आरोप लगता है कि आप हम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विरोधी हैं। तो ये तो श्रोताओं के ऊपर है कि वो फैसला हमारे बारे में क्या सुनाते हैं। हम अपना काम करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल मैं इजाजत चाहता हूँ आप सभी से और चलते चलते पता बता देता हूँ। बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल लिखिएगा hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
आपके पत्रों के उत्तर। विराट कोहली की कप्तानी में खेलते हुए भारत ने आज इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट मैच में 246 रनों से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के मुकाबले अपनी ही जमीन पर इंग्लैंड को भी हराना भारत के लिए आसान नहीं था, लेकिन अपने गेंदबाजों के दम पर भारत जीतने में कामयाब रहा। पूरे ब्यौरे के साथ आदेश कुमार गुप्त।
भारतीय क्रिकेट टीम का अपनी ही जमीन पर जीत का सिलसिला जारी है और अब उसकी गिरफ्त में आई इंग्लैंड की टीम, जो जीत के लिए 405 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आज खेल के पांचवें और अंतिम दिन केवल 158 रनों पर ढेर हो गई। और इस तरह भारत ने विशाखापत्तनम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच को 246 रन के बड़े अंतर से जीत लिया। वैसे इंग्लैंड पर हार का खतरा कल तभी मंडराने लगा था जब खेल समाप्त होते होते उसने अपने दोनों सलामी बल्लेबाज कप्तान एलिस्टियर कुक और हसीब अहमद के विकेट 87 रन तक खो दिए। कल भारत के चेतेश्वर पुजारा ने संकेत दे दिए थे कि इस विकेट पर बल्लेबाज अब अंगद का पांव जमाकर नहीं खेल सकते।
मेरा ये मानना है कि ये विकेट ऐसा है कि जहां पर डिफेंसिव खेले तो थोड़ा विकेट लेना मुश्किल है, बट देखा कि विकेट पर जैसे लो बाउंस था, अश्विन का एक दो बॉल बाउंस हुआ, जड्डू का बॉल रफ से काफी बाउंस हो रहा था, तो ऐसा इवन डिफेंसिव खेले तो भी इतना आसान विकेट नहीं है।
और पुजारा की बात तब सही साबित होने लगी जब आज इंग्लैंड ने 87 रन पर दो विकेट से आगे खेलते हुए लंच तक अपने 7 विकेट केवल 142 रन तक खो दिए। आज पहले तो बेन डुकेट बिना कोई रन बनाए आर अश्विन की गेंद पर विकेटकीपर साहा के हाथों कैच हुए। उसके बाद मोइन अली 2 रन बनाकर रविंद्र जडेजा की गेंद पर विराट कोहली को कैच दे बैठे। फिर बारी आई बेन स्टोक्स की, वो भी 6 रन बनाकर जयंत यादव की गेंद पर बोल्ड हुए। आखिरकार भारत को सबसे बड़ी कामयाबी जो रूट के रूप में मिली, जो 25 रन बनाकर मोहम्मद शमी की गेंद पर LBW हुए। अगले बल्लेबाज आदिल रशीद भी शमी की गेंद पर साहा को कैच दे बैठे, उन्होंने 4 रन बनाए। इसके बाद जफर अंसारी बिना कोई रन बनाए आर अश्विन और स्टुअर्ट ब्रॉड 5 रन बनाकर तथा जेम्स एंडरसन बिना कोई रन बनाए जयंत यादव का शिकार बने। जयंत यादव ने 30 रन देकर 3, आर अश्विन ने 52 रन देकर 3, मोहम्मद शमी ने 30 रन देकर 2 और रविंद्र जडेजा ने 35 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। मैच जीतने के बाद भारत के कप्तान विराट कोहली ने कहा कि पहली पारी में 200 रनों की बढ़त महत्वपूर्ण साबित हुई।
एक बार आप जब टोटल लगा देते हैं बोर्ड पे तो अगर विकेट में कुछ नहीं भी है तो प्रेशर अलग होता है। हमारे 450-460 रन्स थे तो बैट्समैन को पता है यू कांट अफोर्ड टू मेक मिस्टेक्स। जैसे ही मिस्टेक करोगे तो 3-4 विकेट एक सेशन में आते हैं, तो हमें 200 रन का लीड मिल पाया उस वजह से। तो आई थिंक फर्स्ट इनिंग्स का प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बाद में विकेट डिफिकल्ट हो जाता है।
इस टेस्ट मैच की पहली पारी में 167 और दूसरी पारी में 81 रन बनाने वाले विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच रहे, तो अपने ही पहले टेस्ट मैच में 4 विकेट लेकर ऑफ स्पिनर जयंत यादव ने अपना चयन सही साबित किया। बल्ले से भी उन्होंने पहली पारी में 35 और दूसरी पारी में नाबाद 27 रनों का योगदान दिया। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच शनिवार से खेला जाएगा। इस जीत के साथ ही भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ मैदान पर ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक जीत भी हासिल की।
और सभा समाप्त करने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। नोटबंदी के मुद्दे पर भारतीय संसद में आज दिन भर हंगामा हुआ और दोनों सदनों की बैठक स्थगित करनी पड़ी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि नोटबंदी की घोषणा के बाद से अब तक बैंकों में रुपयों की शक्ल में 75 अरब डॉलर जमा हो चुके हैं। अफगानिस्तान में पुलिस का कहना है कि काबुल में एक मस्जिद के भीतर हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास हुई ट्रेन दुर्घटना में अभी भी राहत कार्य जारी है। इस दुर्घटना में अब तक 140 से अधिक मौतों की सूचना है। भारत के सेनाध्यक्ष जनरल दरबीर सिंह और सेना के अन्य बड़े पदाधिकारी चीन की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए हैं। श्रीलंका की सरकार ने देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना बढ़ा दिया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।